आज है 31 दिसंबर दिन गुरुवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। कैसे अपने पिता से नफरत करने वाला एक बेटा उनकी मौत के बाद तमाम तरह की भावनाओं और समस्याओं से घिर जाता है।
फ्यूनरल पेमेंट के लिए अप्लाई किया अंकल, आप तो जानते हैं पापा तो कुछ छोड़कर नहीं आए।
ओ, कुछ भी नहीं?
नथिंग। सोशल बेनिफिट से फ्यूनरल का आधा पेमेंट मिलेगा, बाकी आधे का इंतजाम मुझे ही करना है।
लेकिन फिर जिंदगी लेती है करवट।
इतने दिनों तके खाने के बाद में एक ठीक ठाक नौकरी मिल गई है।
क्या नौकरी मिली है?
कुक बन गया हूँ। कुक?
हाँ? रब्बा।
सुनेंगे बंधक नाटक का दूसरा भाग, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। बेल्जियम की पुलिस ने ब्रसल्स में नए साल के समारोह पर हमला करने की साजिश के सिलसिले में 6 और लोगों को हिरासत में लिया है। सरकारी अभियोक्ता ने कल पकड़े गए 2 लोगों की हिरासत की अवधि और बढ़ा दी है। ब्रसल्स ने नए साल के अपने आधिकारिक समारोहों को रद्द कर दिया है। यूरोप के कई शहरों में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। पेरिस ने अपने आतिशबाजी के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है, हालांकि लोग शांज़-एलिज़े के मुख्य चौराहे पर इकट्ठा हो सकेंगे। मॉस्को में रेड स्क्वायर को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी पुलिस का कहना है कि कम से कम 3 महिलाएं लाहौर शहर से सीरिया जाकर इस्लामिक स्टेट गुट में शामिल हो गई हैं। कहा जा रहा है कि ये महिलाएं अपने बच्चों के साथ सीमा पार कर ईरान पहुंची और वहां से सीरिया। इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने देश में आईएस की किसी भी मौजूदगी से इनकार किया था, लेकिन इसी हफ्ते सुरक्षा बलों ने कहा कि उन्होंने लाहौर के करीब एक आईएस सेल को तोड़ा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की एक अदालत ने 3 साल पहले एक धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगर की हत्या के मामले में 2 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई है। फरवरी 2013 में धर्मनिरपेक्ष लेखकों और ब्लॉगरों के एक जुलूस से लौटते हुए रजीब हैदर की हत्या कर दी गई थी। बांग्लादेश में ब्लॉगर्स की हत्या के सिलसिले में ये किसी अदालत का पहला फैसला है। इस साल बांग्लादेश के 5 लेखकों और ब्लॉगरों की हत्या की गई है। रजीब हैदर के पिता नजीमुद्दीन ने अदालत के बाहर कानूनी प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा कि हो सकता है कि इस हत्या में शामिल और कुछ लोगों को जुर्म के मुताबिक सजा ही ना मिले।
এটা খণ্ডিত রায়, প্রভাবিত রায়, যেখানে 5 জন নিজে স্বীকার করছে, প্রথম 5 জন আসামি।
ये एक अधूरा फैसला है। 5 दोषियों ने अपना अपराध स्वीकार किया था। सबूत भी हैं कि वो ही हत्यारे हैं। उन्होंने मीडिया के सामने ये कबूल किया है। इसके बाद भी अगर उन्हें जुर्म के मुताबिक मौत की सज़ा ना मिले तो इसका मतलब ये है कि ये दबाव में लिया गया फैसला है। मैं इस फैसले को नहीं मानता। ये थे नजीमुद्दीन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यमन के एक सरकार समर्थक वरिष्ठ मिलिशिया नेता की अदन शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बंदूकधारी एक कार और एक मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने अहमद अल इदरीसी के रक्षा दल पर हमला कर दिया। इस हमले में 4 और लोगों की मौत हो गई। इदरीसी पॉपुलर सदर्न रेजिस्टेंस के नेता थे। ये संगठन हूती विद्रोहियों और उनके सहयोगियों से संघर्ष करता रहा है। ये हमला इस बात का भी संकेत है कि अदन में अस्थिरता और हिंसा बढ़ रही है। सरकार ने अदन को अस्थायी राजधानी का दर्जा दिया है और इस पर अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश कर रही है। अफगानिस्तान में फरखुंदा का परिवार देश छोड़कर ताजिकिस्तान चला गया है। पिछले साल मार्च में फरखुंदा को कुरान की प्रति जलाने के झूठे आरोप में भीड़ ने पत्थरों से मार दिया था। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। बीबीसी वर्षांत कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल आपने नाटक बंधक का पहला भाग सुना था। कल आपने सुना कि लंबे समय तक अपने पिता से नफरत करता रहा एक बेटा और उनके जाने के बाद कैसे भावनाओं में डूब जाता है। पिता की मौत के बाद अपने देश से कोसों दूर अकेला पड़ जाता है और कैसे उसकी जिंदगी बदलती है। तो सुनिए बंधक का दूसरा भाग, जिसे लिखा है बीबीसी हिंदी की पूर्व प्रमुख अचला शर्मा ने और निर्देशन किया है आपके पसंदीदा प्रसारक परवेज आलम ने।
ये बीबीसी की हिंदी सेवा है। बंधक प्रस्तुत है अचला शर्मा के लिखे हुए इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। नाटक में अब तक आपने सुना ऋषिकेश खन्ना उर्फ रेकी के पिता जोगिंदर खन्ना का लंदन में देहांत हो जाता है। पिता ने विरासत में बेहद कड़वी यादों और गरीबी के सिवा कुछ नहीं छोड़ा। जोगिंदर लोकप्रिय व्यक्ति नहीं थे। शराब पीकर दंगा फसाद करना उनका मिजाज बन गया, इसलिए उनकी पहली पत्नी और उनका बेटा उनको छोड़कर अलग हो गए थे। लुधियाना की रहने वाली रिकी की अपनी माँ भी कभी खुश नहीं रही। रिकी को अपने पापा से कभी नफरत थी, मगर अब वो पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित है। रिकी को अपने पापा के अंतिम संस्कार के लिए पैसे जुटा पाना मुश्किल हो रहा है। लीजिए सुनिए इससे आगे।
मैं वनवासी आया पगण जून 84।
हेलो बेटे, तुम रिकी हो ना?
जी, आप ईश्वर अंकल?
हाँ बेटे, मेरा नाम ईश्वर है। मैं तुम्हारे पापा का बहुत पुराना दोस्त हूँ और ये मेरी वाइफ है संतोष।
हेलो बेटा।
मेरी बहन जी।
मैं लुधियाने का ही रहने वाला हूँ।
हाँ, आपने बताया था फोन पे।
मुझे तो पता ही नहीं था, कल ही इंडिया से किसी ने फोन करके बताया। पर बेटे, जब बीमार हुए मुझे एक फोन तो करना चाहिए था ना, इतना तो बनता है।
बीमार तो पापा कई साल से थे, बस पिछले हफ्ते डेथ हो गई उनकी। ये देखिए, मेरे मोबाइल में पापा की फोटो, 3 महीने पहले खींची थी, एकदम फिट थे, और अब इस दुनिया में नहीं है। रोज सुबह इस फोटो को ही मत्था टेक लेता हूं।
बेटा जरा खिड़की तो खोल दो, कुछ स्मेल सी है, जरा ताजा हवा आएगी। तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान है, फ्रिज में रख लो।
फ्रिज तो खराब है आंटी।
तो बेटा फिर आज ही खा लेना।
जी।
फ्यूनरल कब का है, कुछ तय किया गया?
अभी नहीं, फ्यूनरल पेमेंट के लिए अप्लाई किया अंकल। आप तो जानते हैं, पापा तो कुछ छोड़कर नहीं गया।
ओ, कुछ भी नहीं?
नथिंग
नथिंग। सोशल बेनिफिट से फ्यूनरल का आधा पेमेंट मिलेगा, बाकी आधे का इंतजाम मुझे ही करना है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं।
बेटे डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। फिक्र क्यों करता है?
क्या? थैंक यू, थैंक यू वेरी मच अंकल, थैंक यू।
अच्छा, इंडिया से कोई आएगा फ्यूनरल के लिए क्या?
कोई नहीं आएगा, मम्मी ने कहा था, लेकिन छोटी, मतलब मेरी छोटी सिस्टर का एग्जाम है, तो उसे अकेला छोड़ के आना मम्मी के लिए इम्पॉसिबल है।
आए भी क्यों, जब तक यहाँ रही दुखी रही बेचारी।
सॉरी।
छोड़ो जी, ये इन बातों का मौका नहीं है इस समय। अच्छा, फ्यूनरल के लिए चेक मैं तुम्हें दे दूं या?
नहीं, आप मुझे मत दीजिए, फ्यूनरल होम में एडवांस जमा करवा दीजिए। हाई स्ट्रीट पर ही उनका ऑफिस है, एल्बर्टन के पास।
कुछ और मदद चाहिए बेटा तो बताना।
हाँ, झिझक ना मत, परदेश में अपने को बिल्कुल अकेला मत समझना।
और बेटा घर को जरा साफ कर लो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा।
करूंगा आंटी, पर फिलहाल तो किसी काम में दिल नहीं लगता। पापा की याद आती रहती है, रात को नींद नहीं आती है, फिर जाके पापा के बेड पे लेट जाता। मम्मी ने फोन पे कहा कि पापा का बिस्तर, उनके कपड़े, सब चीजें फेंक दो, तो मैंने फेंक दी। अब पापा और उनकी हर चीज को मिस करता हूं। हर वक्त उनकी आवाज, उनकी गालियां मेरे कानों में गूंजती रहती।
बस बस कर रिकी बेटा, बस कर।
रिकी पुत्र, उठ, पॉटी आई है। एक आवाज बनी उठता था तो मोटी मोटी गालियां देते थे। ओए कोते दे पुत्र, उठ उठ, उठता क्यों नहीं है?
रिकी बेटा बस कर, बस कर रिकी।
पापा होते तो आज कोई कमी नहीं होती। कभी कभार दोस्तों के साथ बाहर जाता तो अपना डेबिट कार्ड निकाल के दे देते, कहते थे ले पुत्र ऐश कर, जितना चाहिए निकाल लेना, और मैं हूं ना जोगिंदर खन्ना। ये जैकेट पापा ने दिलाई थी।
मुझे मालूम है बेटे, तुम्हारे पापा ऐसे ही थे। मैं उनके लंदन आने के 2 साल बाद यहाँ आया था, और शुरू शुरू में कोई रहने का ठिकाना मेरे पास नहीं था। जोगी ने कहा कोई बात नहीं, मैं हूं ना, हमारे यहाँ रहना। इतना फराग दिल, खुले दिल का आदमी था वो।
एक बात बता बेटा, उन लोगों को खबर कर दी, उनकी पहली वाइफ को या उसके बेटे को?
जी, फोन किया था मैंने, उनके लड़के ने ही फोन उठाया था शायद। बहुत रूडली बोला, कहने लगा वो तो न जाने कब का मर गया, फिर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी थी फॉर पापा से, छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। वो कमीना सामने जिस दिन पड़ा उस दिन की एक एक हड्डी।
नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, मैं फोन करके देखूंगा। और मुझे काफी मानती थी जोगी की पहली वाइफ। अच्छा बेटा, हमें अब जाना है, हम चलते हैं। मेरा फोन नंबर तो तेरे पास है ही है।
अपना ध्यान रखना बेटा।
ठीक है। एंड अंकल, आंटी, थैंक यू वेरी मच।
हम हैं ना, फिकर ना कर तू।
जी तेरे बेटा।
हाँ जी मम्मी जी।
और कैसा है रिकी?
आप बिना बस फालतू के सवाल करते हो, ऐसे हालात में बंदा कैसा हो सकता है बताओ?
ये बात कैसे कर रहा है तू?
तो और कैसे बात करूं, रोज रोज एक ही सवाल पूछते हो, कैसा है तू, कैसा है तू, और आपको 10 बार जवाब दे चुका हूँ, तंग आ गया हूँ आपके सवाल से।
और तुझ में क्या अपने पापा का पूत समा गया है? पहले तो ऐसे बात नहीं करता था।
सॉरी मम्मी जी, सॉरी। 4 दिन बाद पापा का अंतिम संस्कार है, बड़े सारे काम करने हैं मुझे।
अच्छा ये बता, वो लोग आएंगे?
तो कौन लोग?
वही तेरे पापा की पहली फैमिली। और बड़ा बेटा भी अंतिम संस्कार में मौजूद रहता तो उनकी आत्मा को शांति मिलती।
उस बड़े बेटे का नाम नहीं लो, मेरे सामने आ गया ना वो, तो उस कुत्ते को वहीं जान से मार दूंगा, छड्डूंगा नहीं, गला कोट दूंगा उसका मैं। और सुनो, प्लीज स्टॉप नैगिंग मी मम्मी, प्लीज।
नैग कहाँ कर रही हूँ बेटा, तेरे बात करने का अंदाज बहुत बदल गया है, बिल्कुल बाप की तरह जरा जरा सी बात पर चीखने लगता है। और पंजाबी में ऐसी गालियां तो तूने लुधियाना में भी नहीं निकाली, बिल्कुल बाप पे गया है।
तो आखिर बेटा भी तो उन्हीं का ही हूँ। बाद में फोन करता हूँ आपको, कुछ और उल्टा सीधा मुंह से निकल गया तो फिर ताने दोगे। बाप पे गया, बाप पे गया, बाप ना हो गया मेरा राक्षस था क्या?
और मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो ताने देती फिरूंगी? अच्छा मेरी
मम्मी जी, मुझे वेम्बली सेंट्रल पहुँचना है 15 मिनट में, वहाँ ईश्वर अंकल मेरा वेट कर रहे हैं, वापस आके आपकी सारी बातें सुनूंगा, बाय।
A week after the attacks by jihadis in Paris and on the day of a siege and hostage crisis in Mali, we ask how will the terror attacks affect Europe's attitudes to Syrian refugees?
ये लो बेटा, बैठो।
Thank you so much, uncle. I'm sorry आपको इतनी दूर से आना पड़ा।
अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आज दरअसल मुझे इस तरफ आना ही था। अच्छा मैंने इस बार ध्यान दिया, इस एरिया में सोमाली बहुत आ गए हैं, पहले तो इतने नहीं थे।
ईस्ट यूरोपियन भी बहुत है, पोलैंड और रोमानिया से तो आ ही रहे हैं, मेरा जॉब भी ले गए, और अब सुना है सीरिया से भी आएंगे। ये कंट्री तो गई गटर में अंकल।
दैट्स अ वेरी रेसिस्ट थिंग टू से रिकी, तुम्हारे पापा और मैं दोनों ऐसे ही आए थे रेफ्यूजीज की तरह।
पापा को इस देश ने क्या दिया, सारी जिंदगी रेफ्यूजी की तरह ही तो रहे यहाँ पे, नो लक नो सक्सेस।
सक्सेसफुल तो बेटा जोगिंदर भी हो जाता अगर सोशल बेनिफिट्स का मोह छोड़ देता।
क्या पापा हमेशा से ऐसे ही थे?
नहीं हमेशा से तो नहीं, मगर जिंदगी का ज्यादा हिस्सा ऐसे ही गुजार दिया। मुझे याद है शुरू शुरू के सालों में तुम्हारे पापा में कुछ कर गुजरने का हौसला था, एक स्टोर में नौकरी की, 2 साल बाद स्टोर मैनेजर भी बन गया, लेकिन एक दिन वहां किसी से खटपट हो गई, झगड़ा हो गया, छूट गई नौकरी।
गुस्सा गुस्सा हमेशा से गुस्से वाले थे।
कुछ तो पहले से था, धीरे धीरे और झगड़ालू हो गया, फिर कई जगह काम किया, हर बार 6 महीने में नौकरी किसी न किसी कारण छोड़नी पड़ी। शायद उसके दिल में तमन्ना थी कुछ और बनने की, पर काम दिल का मिलता नहीं था। पहली शादी टूट गई, जब मैं उनके साथ रहता था तभी से झगड़े शुरू हो गए, और बिना गालियों के तो बात ही नहीं कर सकता था।
अच्छा अंकल वो आएगा?
कौन, बड़ा बेटा? देखो, मैंने अपनी तरफ से तो समझाया था उसकी माँ को कि चाहे वो खुद ना आए पर कम से कम बेटे को भेज दे।
कैसा लगता है वो दिखने में?
मैंने कई साल से नहीं देखा उसे। उन्होंने ऐसे हर इंसान से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिए जो जोगिंदर को जानता हो। पता नहीं कैसा लगता होगा। अच्छा रिकी, अब मैं चलता हूँ, ठीक है?
छड्डांगा नहीं उसने, जान से मार दूंगा।
क्या बेटा, कुछ कहा?
जी नहीं।
मैं बनवासी।
ओए चल पुत्र, आज बाप बेटा मिलकर स्काच पिए हैं। और ये बियर वियर क्या पीता रहता है तू, छोड़।
पापा पता है ना
क्या,
डॉक्टर ने आपको मना किया।
ओए
ये पीना तो क्या, इसे छूना भी पाप है आपके लिए पापा।
ओए देख, ओ मैं डॉक्टर बदल दांगा।
पर ये बात सच है कि आपके लिए पीना पाप है।
ये तूने अपनी तरफ से कोई शायरी करने की कोशिश की है, है? पापा पाप पापा पाप। ओले ओले, एक मिनट। ओए रिकी, फॉर माय सेक। ओए ले।
अच्छा ठीक है। मैं
खोते आप ले।
एक बार फिर और चेयर करो। लेकिन पापा आप बस ज्यादा मत पीना, एक ड्रिंक आप सिर्फ एक ड्रिंक लो।
ओए खोतिया, ओए तू फिर टोका टोकी शुरू कर देती हैं, ये कहाँ से सीखा, अपनी माँ से?
देखो मम्मी को बीच में मत लाओ पापा, मैं आपको कितनी बार कहता हूँ, मम्मी को बीच में मत लाया करो।
अच्छा ठीक है, चल नहीं लाता। ओ तू मेरा पुत्र है तो उठा गिलास और पिया एक घूंड में, चुक। ओए बॉटम अप।
ठीक है मैं पीता हूँ, पर आप तो पीना बस करो।
ओए पुत्र अभी तो शुरू ही नहीं की, बस कर। है मैं बनवासी। ओए आया पोगण जून चुरासी, मैं बनवासी।
ये क्या बोलते रहते हो आप?
अरे पुत्र ये पोइट्री है, पोइट्री। ओए तू नहीं समझेगा इसका मतलब। ओए पंजाबी का बड़ा मशहूर शायर था शिव कुमार बटालवी।
हाँ नाम सुना मैंने,
उसकी पोइट्री है ये। हाँ तेरा बाप भी किसी जमाने में पोइट्री करता था। अब तो सारे शौक खत्म हो गए।
पापा आप शायरी पोइट्री करते थे?
और नहीं तो क्या,
सच में?
हाँ बीए पास हूँ, बीए। वो जब कॉलेज में था तब करता था शायरी।
अच्छा।
हाँ जोगिंदर खन्ना बीए। बस कॉलेज छूटा, शायरी छूटी, मुल्क छूटा, बीवी छूटी, बच्चे छूटे, एक एक करके सब छूटे।
ऐसा क्यों कहते हो पापा, मैं हूं ना आपके पास।
ओए तू भी तो अपनी माँ का है। ओ नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई नहीं।
ऐसी बातें मत,
कोई नहीं मेरा,
पापा ऐसी बातें आप जब करते हो मुझको बहुत बुरा लगता है। मैं हूं ना आपके पास, मैं आपका बेटा हूं पापा, मैं आपका पुत्र हूं।
सच्ची तू मेरा पुत्र है?
हाँ पापा, कैसी बातें कर रहे हैं?
तू सच्ची मेरा पुत्र है
पापा?
तो जब मैं न रहूं तो एक काम करेगा?
क्या पापा?
वो एक फोन करना है।
किसको पापा?
किसको? मैं बनवासी आया पोगण जून चुरासी। ओए तुम्ही गा। अच्छा। मैं बनवासी आया पोगण जून चुरासी, कोई ल लक्ष्मण ना मेरा साथी ना मैं राम अयोध्या वासी मैं बनवासी मैं बनवासी आया पोगन जो
पापा पापा
पापा क्यों आया
हाय रोशन
हाय रिकी पंडित जी को फिक्स कर दिया मैंने वो बेचारे तो एक पैसा नहीं लेंगे कैसा है तू
हाउसिंग डिपार्टमेंट बात करने गया था ये फ्लैट पापा के नाम था कहते हैं एक दो महीने में खाली करना पड़ेगा क्योंकि ये फैमिली फ्लैट है
अपने लोकल एमपी के पास चलेंगे शायद कुछ मदद करें फ्यूनरल हो जाने दे
ठीक है और सुन कल मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए गया था
अरे गुड
अच्छा खासा चल रहा था इंटरव्यू पर जब उन्होंने पूछा कि मैंने पिछली जॉब दो हफ्ते पहले क्यों छोड़ दी तो मुझे पापा की डेथ के बारे में बताना पड़ा और बस मैं जोर जोर से रोने लगा
जॉब ढूंढ लेना पर जब मन थोड़ा ठीक हो जाए
आई नो लेकिन क्या करूं वहां इंडिया से मॉम रोज फोन करती हैं प्रेशर डालती हैं कि अंतिम संस्कार के बाद मैं इंडिया वापस चलो जाऊं
मिल के बात करते हैं रिकी डोंट वरी मेट
ठीक
आज हम सब यहाँ स्वर्गीय श्री जोगिंदर खन्ना जी के अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठे हुए हैं गीता में कहा गया है वासांस जीर्णान यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देह मतलब जैसे जगत में मनुष्य पुराने जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्रों को ग्रहण करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नवीन शरीर को प्राप्त करती है पुण्यात्मा की शांति के लिए अब आप मेरे साथ गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
भाई बड़ी अच्छी सर्विस रही रिकी तुम्हारे पापा की विदाई बहुत इज्जत से हो गई
थैंक्स अंकल सब कुछ आप ही ने तो किया अंकल
अरे हमने कुछ नहीं किया बेटा ये तो तुम्हारी हिम्मत थी अच्छा रिकी एक मिनट रुको मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ प्लीज कम इन प्लीज
या श्योर कम इन कम इन
रिकी आओ देखो ये वही लोग हैं जिनका तुम्हें इंतजार था
जी
तुम्हारे पापा की पहली वाइफ और उनका बेटा हेलो
हेलो My name is Vikram, but then you can call me Vicky.
Vicky.
We don't know any Jogindar Khanna. Stop bothering us, okay?
Vicky.
Very sorry for your loss.
Ricky.
Thanks.
बेटे ये लोग माने ही नहीं. Funeral का सारा payment इन्होंने ही किया. और service के बाद refreshment का खर्च भी इन्हीं की तरफ से आया है.
Thank you very much.
Thanks तो हमें कहना चाहिए Ricky. वैसे तो मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती. फिर भी कह रही हूँ. अब अपनी जिंदगी पर ध्यान दो मेक इट मीनिंगफुल
थैंक्स फॉर योर एडवाइस
हेलो
मम्मी जी वेरी बैड ना
जिंदर है पुत्र जिंदर है
की हाल चाल
मैं तो ठीक हाँ तेरी कोई खबर ही नहीं है कितनी बार फोन किया मैं
अब क्या बताऊँ मम्मी जी आजकल बहुत बिजी हूँ ना
अच्छा तू कह रहा था वो फ्लैट खाली करना था
हाँ जी मैंने कर दिया वो मनहूस फ्लैट खाली वैसे एक लोकल काउंसलर ने कोशिश की थी कि कंपैशनेट ग्राउंड पर 3 महीने की और मोहलत मिल जाए पर मुझे नहीं रहना था वहाँ पर
फिर
क्या अब मैं और मेरा दोस्त रोशन एक फ्लैट शेयर करके रहते हैं
पर बेटा किराया कहाँ से देते हो?
नौकरी मिल गई है मम्मी जी। इतने दिनों तके खाने के बाद में एक ठीक ठाक नौकरी मिल गई है।
क्या नौकरी मिली है?
कुक बन गया हूँ। कुक?
कुक?
हाँ
रब्बा।
हाँ जी, खाना पकाता हूँ।
खाना बनाता है? और किसके घर में पकाता है?
नहीं 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 नहीं, नहीं। श्रीन के भाई ने एक तंदूरी रेस्तरां खोला है।
नसरीन? कौन नसरीन?
मैंने ना एक दिन नसरीन के पापा को काली दाल बनाकर खिलाई, उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने मेरे को सिफारिश ही कर दी।
अच्छा।
काम मिल गया और डिग्री तो दी अपने पास में, बस एक्सपीरियंस नहीं था कुछ खास, पर उन लोगों ने कहा है कि 6 महीने तक ट्राई करेंगे वो मुझे।
अच्छा। पर बेटा तुझे खाना वाना बनाना आता भी है?
वाह मम्मी जी वाह। हैं? 3 साल होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कराई आपने मुझे इंडिया में, इतना ही भरोसा अपने पुत्र पे? और जो आपको और पापा को देख देख के सीखा मैंने वो कुछ नहीं है, हैं? अब तो यहाँ विकी आल्सो लव्स माय फूड।
कौन विकी?
और वो कंचन आंटी सेज यू आर द बेस्ट कुक इन द टाउन।
और कौन कंचन?
वो मैं सब बताऊंगा आपको, सब बताऊंगा। मम्मी जी ये तो बस शुरुआत है, अब देखना आपका पुत्र कुछ बन के दिखाएगा। अच्छा मम्मी जी मैं आपको फिर फोन करता हूँ। मम्मी जी मेरी ट्रेन आ रही है, ध्यान ना सुनो, 1 मिनट में ट्रेन टनल में चली जाएगी तो फिर फोन कट जाएगा। अपना ध्यान रखना मम्मी जी, और आप कोई फिक्र मत करना, और हाँ छोटी को मेरी हेलो कह देना, ठीक है? और मैं जल्द आपको फोन करूंगा, या फिर आप मुझे फोन कर लेना, मेरा नंबर आपके पास में आ गया, ठीक है? बाय बाय। और गड्डी आ गई मम्मी जी, बाय बाय।
बंधक। अभी आप सुन रहे थे अचला शर्मा के लिखे हुए इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। निर्देशक थे परवेज आलम। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है: ऋषिकेश खन्ना बावला कोचर, जोगिंदर खन्ना बनवारी तनेजा, रिकी की माँ हर्ष बाला, मनीषा इंदु पांडे, बॉबी सिंह विदित मेहरा, रोशन अजीत सारथी, नसरीन श्वेता सिंह, ईश्वर राजेश जोशी, संतोष मानसीदास, पंडित मोहनलाल शर्मा, कंचन प्रगति सक्सेना और विक्की की भूमिका में थे परवेज आलम।
प्रवासी भारतीयों की जिंदगी पर लिखे गए नाटक बंधक को आप नमस्कार भारत में सुबह 6:30 बजे दोबारा सुन सकते हैं। और आपको बंधक नाटक कैसा लगा हमें ज़रूर लिखेगा bbchindi.com के पन्ने पर। वर्षांत विशेष पर अगर आप क्लिक करें तो अब तक प्रसारित हो चुके वर्षांत कार्यक्रमों को आप अपने सुविधानुसार भी सुन सकते हैं। और अगर इस नाटक को के बारे में आपकी जो भी राय हो, कैसा आपको लगा, बहुत पसंद आया, हमें ज़रूर अपनी राय लिखेगा। और इस नाटक को लिखा था अचला माने और इसका निर्देशन किया था परवेज आलम ने। कल दिन भर में राजेश जोशी लेकर आएंगे सिने राग। इसमें क्या होगा वो जानने के लिए आपको करना होगा कल तक का इंतजार, क्योंकि अब सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। बेल्जियम की पुलिस ने ब्रसल्स में नए साल के समारोह पर हमला करने की साजिश के सिलसिले में 6 और लोगों को हिरासत में लिया है। यूरोप के कई शहरों में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। पेरिस ने अपने आतिशबाजी के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। मॉस्को में रेड स्क्वायर को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी पुलिस का कहना है कि कम से कम 3 महिलाएं लाहौर शहर से सीरिया जाकर इस्लामिक स्टेट गुट में शामिल हो गई हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की एक अदालत ने 3 साल पहले एक धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगर की हत्या के मामले में 2 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई है। बांग्लादेश में ब्लॉगर्स की हत्या के सिलसिले में ये किसी अदालत का पहला फैसला है। यमन के एक सरकार समर्थक वरिष्ठ मिलिशिया नेता की अदन शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अफगानिस्तान में फरकुंदा का परिवार देश छोड़कर ताजिकिस्तान चला गया है। पिछले साल मार्च में फरकुंदा को कुरान की प्रति जलाने के झूठे आरोप में भीड़ ने पत्थरों से मार दिया था। फरकुंदा मलिकजादा परिवार के वकील ने बताया कि उन्हें मिलिशिया के नेता से जान की धमकियां मिल रही थीं, इसलिए परिवार पहले काबुल में रहने लगा और अब ताजिकिस्तान चला गया है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी प्रगति सक्सेना। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे घटना चक्र में ताज़ा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त।